सनातन परंपरा एक खुली हुई जीवन व्यवस्था है। जो भी इसे अपने जीवन में आदर्श व्यवस्था के रूप में अपनाना चाहे, उसके लिए ये बिना किसी शर्त, बंधन या अनुबंध के शुद्ध प्रेम से अपनी बाहें खोले हुए तैयार है। इसकी ज्ञान और भाव संपदा इतनी अधिक है कि हर व्यक्ति अपनी क्षमता भर झोली और अंजुली भर सकता है। यही कारण है कि इससे अभिभूत होकर बहुत से विदेशियों ने इसे जीवन व्यवस्था या धर्म की तरह अपना लिया है। आज हम चुभन पॉडकास्ट पर जिनसे मिलेंगे, उन्होंने भी भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म से प्रभावित होकर इसे पूरी तरह अपना लिया और यहीं के होकर रह गए। आप हैं महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानेश्वर पुरी जी, जिनका जन्म क्रोएशिया में हुआ, जो दक्षिण पूर्व यूरोप में बसा एक देश है। आप क्रोएशिया से कैसे भारत आए और फिर यहाँ सनातन धर्म को आपने पूरी तरह स्वीकार किया, आइए उनसे ही जानते हैं उनके इस आध्यात्मिक सफर के बारे में। स्वामी ज्ञानेश्वर पुरी जी, आपको प्रणाम करती हूँ और चुभन पर आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ।
हरिओम, धन्यवाद।
और स्वामी जी, मैं आरंभ करूंगी आपके आरंभिक जीवन से ही। आपका जन्म क्रोएशिया में हुआ, जो कि दक्षिण पूर्वी यूरोप में आता है, तो वहां से भारत तक का सफर कैसे किया आपने?
जब मैं 19 साल का था
जी,
तब हमारे गुरु जी विश्व गुरु महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंद पुरी जी यूरोप थे
जी,
और उन्होंने योगेंद्रली लाइफ का सिस्टम का प्रचार किया था वहाँ, तो काफी लोग उनके साथ जुड़ गए। तो 1990 में मैं उनसे जोड़ा।
अच्छा।
तो 1990 से मैं पहली बार स्वामी जी से मिले, या 1989 से, एंड उसके बाद मैं थोड़ा सा इस भारत के प्रति थोड़ी आकर्षित हो गया।
जी, तो स्वामी जी, मैं ये जानना चाहूंगी, आपने कहा आप अपने गुरु जी से मिले, तो वो गुरु जी यूरोप में ही रहते थे?
हाँ, गुरु जी यूरोप में रहते थे, पिछली अभी भी रहता है, पिछले 50 वर्षों से पूरी पृथ्वी का परिक्रमा कर रहे हैं
जी।
50 वर्ष में तो 50 बार तो परिक्रमा हो गया
जी जी,
और उनके 2500 सेंटर से यूरोप में तौर पर, खास तौर पर, बाकी तो अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे अलग अलग जगह में होता है
जी। तो यूरोप में, इसका मतलब सनातन धर्म का लोगों को उसमें आस्था थी, तभी तो गुरुजी वहां पर गए और लोगों ने उन पर आस्था रखी और आप जैसे लोगों ने उनका शिष्यत्व ग्रहण करके और आप भारत आए।
सबसे पहले हमको तो सनातन धर्म का नाम भी मालूम नहीं था
जी।
और सबसे पहले जब हम आए थे, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ यूरोप में उस समय तो योग के बारे में सुना, केवल सुना योग के बारे में
जी,
बाकी हमको कुछ मालूम ही नहीं था कि उसमें काफी सिस्टम तो पड़े, लेकिन सिस्टमैटिक किसी ने योग के साथ काम नहीं किया, इसलिए अभी स्वामी जी ने सिस्टमैटिकली एक योग आसन और प्राणायाम एक क्रम में डाला
जी।
तो उसके ऊपर उन्होंने एक सिस्टम बनाया, योगेंद्रली लाइफ। लेकिन योगा ऐसे गुरु जी की तरफ से वो कह रहे आप पूर्ण है अगर आप शाकाहारी बिकनी बनते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न जो था कि हम शाकाहारी वेजिटेरियन क्यों बने
जी,
हमारा पहला प्रश्न था उस समय 1990 की बात है
जी जी,
कि शाकाहारी क्या होता है, मतलब हमको मालूम ही नहीं था शाकाहारी क्या चीज होती
है। बताइए सर जी।
तो क्योंकि मांस खाना तो अनिवार्य ही था
जी जी,
तो बाबजी ने शाकाहारी भी लेके योग हमको सिखाया और उसके बाद धीरे धीरे हमने अलग अलग, जैसे शिवानंद के, योगानंद के, अलग अलग गुरुओं का किताब हमारे पास कौन सा, उसका अनुवाद आया हमारे पास, तो इसलिए थोड़ा सा हम भारत की तरफ से जोर दिया जाता।
जी, आपको एक मतलब रुचि हुई कि इन बातों को जानूं, और जैसा आपने कहा कि आपको गुरुजी ने कहा शाकाहारी बनने के लिए, तो इसका मतलब यूरोप में तो पूरी तरह से लोग मांसाहारी हैं, और मेरे ख्याल से वहां पर क्रिश्चियन धर्म ही ज्यादा है, शायद 90% के करीब है। तो कौन से वो मुख्य कारण थे गुरु स्वामी जी जिन्होंने आपको भारत की तरफ आकर्षित किया और सनातन धर्म की तरफ, अपने गुरु जी की तरफ आपको आकर्षित किया कि मैं इस धर्म में जाऊं, इसकी शिक्षाओं को ग्रहण करूं?
जो क्रिश्चियनिटी में जो बाइबल है, तो हमने बाइबल भी पढ़ा, तालमुद भी पढ़ा, कुरान भी पढ़ा, और हरे कृष्ण की पुस्तकें भी पढ़ी, तो
जी
जो अवेलेबल है उस हर जगह में। जो उसमें कुछ त्रुटियां दिखाई गई, मतलब इट वाज नॉट परफेक्ट, समथिंग वाज मिसिंग।
जी
तो जो बाकी था, जो सही नहीं था, तो बाप जी ने उनकी प्रवचन में बता रहा था कि ऐसा है सनातन धर्म में, ऐसा है सनातन में, ऐसा है पृथ्वी का ऐसे उद्भव हुआ या डेवलपमेंट वॉज एज इट इज। फिर बाद में हम जब शंकराचार्य के पास पहुंच गए, तो
जी
एक्चुअली तब एक्चुअली काफी परिवर्तन हो गया, क्योंकि जब आपको मालूम है कि रेसिस के बारे में रिलीजन का डिवीजन तो है ही,
जी
कि
जी
हम हिंदू है, मुस्लिम है, हम क्रिश्चियन है, वो तो है ही,
बिल्कुल
लेकिन हम ब्लैक है, हम व्हाइट है, हम पीला है, हम लाल है, वो भी डिवीजन अलग है। तो
जी।
हमारे पृथ्वी के ऊपर बहुत डिवीजन होता है हर लोगों के अंदर,
जी
लोगों के बीच में। तो
अच्छा
हम शंकराचार्य को पढ़ा, जो शंकराचार्य कह रहे हैं एक चीज आत्मा होती है,
जी
और आत्मा केवल मनुष्य का एक एक मतलब अलग अलग नहीं है, एक चींटी या हाथी के भी अलग नहीं,
बिल्कुल जी।
मतलब एक एक कुछ कोई चीज होती है, कोई क्या कहते तो उसको आप लोग गुरु लोग ने उसको आत्मा कहा, जो
जी
पूरे सारे संसार में एक है फिर भी अनेक है, मतलब उसके कभी आप हाथी बन जाओगे, कभी चींटी बन जाओगे, कभी पशु बन जाओगे, कभी मनुष्य बन जाओगे, तो लेकिन मतलब इक्वालिटी ऑल इन वन। और दूसरा चीज जो वासुदेव कुटुम्बकम, मतलब पूरी पृथ्वी
परिवार
आर योर रिलेटिव बेसिकली,
जी।
मतलब वी आर ऑल रिलेटेड टू इच अदर समहाउ। तो
जी
ये यूनिटी जो दिख रही है, ये मुझे बहुत अच्छे लगे।
मतलब मुझे
और जब
आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि शंकराचार्य का जो अद्वैत सिद्धांत है उसने आपको बहुत प्रभावित किया कि किसी में कोई फर्क नहीं है, सब में एक ही आत्मा है, उसी परमात्मा का अंश है वो।
जी जी जी
जी सर। और स्वामी जी, मुझे पता चला कि आपने रामचरितमानस का क्रोएशियन भाषा में भी अनुवाद किया, तो जान सकती हूँ कि क्या कारण था कि आपको रामचरितमानस ने कहाँ तक प्रभावित किया, और फिर आपने उसका जब क्रोएशिया भाषा में अनुवाद किया तो वहां के लोगों ने उसको किस तरह से लिया, कैसे पढ़ा, कितनी आस्था रखी, कितनी उससे शिक्षा ली, कुछ उस बारे में बताएं।
अभी का प्रकाशन तो अभी हुआ 2-4 महीना पहले, तो उनका
अच्छा
भी प्रचार अभी हो रहा है,
अच्छा
मतलब
अच्छा
पूरी तरीके से प्रचार तो नहीं हुआ, क्योंकि
जी
जब मेरे स्वामी जी ने बताया कि आप अनुवाद करो, क्योंकि मुझे संस्कृत में और अलग अलग पुस्तकों में मुझे बहुत रुचि थी,
रुचि थी जी
और मैं संस्कृत सीखा, फिर मारवाड़ी, बाकी जो भाषा है यहाँ की लोकल भाषा, उनके उनके प्रति मेरी रुचि है। तो बाबू जी ने कहा कि आप रामचरितमानस का अनुवाद करो,
जी
तो मैंने शुरू किया। आसपास पहले 2.5 साल लगा तो पूरा होने में, फिर
जी अच्छा
मुझे संतुष्टि नहीं हुई, तो मैंने इसको 2 बार और अनुवाद किया, 2 बार दोबारा अनुवाद किया, तो ये पूरे पुस्तक मैंने 3 बार की करेक्शन करके फिर उसके बाद में प्रकाशन में डाला। तो प्रकाशन में भी 1.5 साल लगा, तो टोटल आसपास 10 साल के आसपास समय लगा।
जी जी।
क्योंकि ये जो यहाँ की जो संस्कृति है और यूरोप की संस्कृति है, बहुत ज्यादा में दिन रात का अंतर होता है। तो जो यहाँ तुलसीदास जी बोल रहे हैं मुझे बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा है, इसलिए मुझे कॉमेंटरी की पढ़ने की बहुत आवश्यकता थी। तो मैंने मानस पीयूष को पढ़ा, क्योंकि मानस पीयूष में आसपास 150-200 कॉमेंटरी है हर श्लोक में, हर दोहे में, सुपाई में आसपास 20 से 50 कॉमेंटरी होते हैं। तो कॉमेंटरी से मुझे काफी मदद मिला कि वास्तव में कावि क्या कहना चाहता है।
जी,
क्योंकि डायरेक्ट अनुवाद तो बहुत सिंपल होता है, अनुवाद करना बहुत सरल है। आजकल गूगल ट्रांसलेट होता है, आप कुछ भी डाल दो गूगल ट्रांसलेट में, वो एकदम क्षण में हो जाता है, लेकिन त्रुटियां बहुत है।
जी,
जो हिंदी में लिखा है और इंग्लिश में आपके पास आया है, वो दिन रात का अंतर होता है कभी कभी।
जी जी,
मतलब इतना अभी तक कंप्यूटर ये काम नहीं कर सकता है और आज भी काम नहीं कर सकता है। जैसे आप हमारे दादा गुरु जी ने कोई भजन लिखा
जी,
कि उनके गुरु के बारे में कि लेख है, हमारे गुरुदेव महाप्रभु जी कैसा है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसा है, ये कृष्ण जैसा है, हनुमान जैसा है, ये सब अनुवाद तो बहुत सरल है, लेकिन अगर आपको मालूम नहीं है हनुमान कौन है, कृष्ण कौन है, रामा कौन है, तो आपकी अनुवाद से कोई मतलब ही नहीं है।
हाँ, ही नहीं आएगा वो। जी जी,
तो इसलिए मुझे एक्चुअली जब मैंने अनुवाद किया, मैंने काफी फुट नोट बना दिया, काफी कॉमेंटरी दिया कि एक्चुअली भारत में क्या चल रहा है, इसकी क्या अर्थ है, क्योंकि यहाँ मुहावरे बहुत है। मुहावरे तो मतलब हर देश में है, लेकिन यहाँ बहुत है, और खास तौर पर रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बहुत मुहावरे लिखे।
जी जी,
तो मुहावरे ऐसे सुंदर सुंदर उनको अंदर अंदर घुसा दिया कि एक्चुअली 3-4 अर्थ निकालते हैं।
जी,
एक छुपाई का 3-4 अर्थ निकाले, अभी कौन सा अर्थ निकालो।
जी,
तो मैंने क्या किया था, मैंने जो जनरली लोगों ने स्वीकार किया इसे अर्थ निकाला।
जी,
नहीं तो आप देखते कोई भी अगर कविता का आप अनुवाद करेंगे या इसके ऊपर कुछ भी बोलेंगे तो बहुत अलग अलग अनुवाद आप कर सकते। जैसे कोई कह रहा है आकाश नीला है, सूर्य पीला है, ऐसे कुछ, तो जब बच्चे को स्कूल में कह देंगे कवि ने क्या बताने की कोशिश किया, फिर अलग अलग बच्चों के अलग अलग जवाब है।
और
जब ऐसे बड़े बड़े कवियों के पास जाते जैसे तुलसीदास जी महाराज, उसके अर्थ अनेक हो जाते हैं।
बिल्कुल,
पहले मैंने सोचा कि जैसे एक श्लोक होता है संस्कृत में, और मुझे सुनने में और पढ़ने में आया कि एक श्लोक अगर सही से लिखा है तो उसमें 7 अर्थ 7 अलग अलग मीनिंग्स निकल सकते हैं एक श्लोक। अभी रिसेंटली मुझे एक श्लोक हाथ में आया जिसमें 13 मीनिंग्स निकलते हैं, क्योंकि श्लोक तो लिखते हैं 7-7।
जी जी,
तो उसको जब टुकड़े करेंगे, अन्वय करेंगे, तब उसमें 13 मीनिंग हो सकती है। तो मतलब ये कवियों की एक महात्मा है, महात्मी, ग्रेटनेस ऑफ द पोएट।
जी बिल्कुल सर, गूगल ट्रांसलेट से वो बात नहीं होगी सर। और मुझे लगता है कि कविता का अनुवाद करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि वो शब्दानुवाद नहीं हो सकता। काव्य का अनुवाद शब्दानुवाद नहीं होगा, बल्कि भावानुवाद होगा कि कवि का भाव क्या था कहने का, वो आप अपने शब्दों में, अपनी जिस भाषा में ट्रांसलेट कर रहे हैं उस भाषा में दे सकते हैं। काव्य का अनुवाद ऐसे ही होना चाहिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा।
और उसमें एक और समस्या आप डाल देना, जैसे आप ओडिशा से कनाडा, कनाडा से तेलुगु, तेलुगु से हिंदी, हिंदी से गुजराती में अनुवाद करेंगे तो कोई इतने ज्यादा फर्क नहीं आएगा, क्योंकि संस्कृति एक ही
है। जी,
लेकिन अगर आप इसको इंग्लिश में अनुवाद करेंगे या क्रोशियन में अनुवाद करेंगे तो उसमें बहुत सोचना पड़ता है कि या आपको समझ आ रहा है ये क्या लिखा है, लेकिन उसको कैसे आगे कैसे दूसरे संस्कृति को आप कैसे हाउ टू कन्फर द मीनिंग, कैसे इसका मीनिंग का दूसरी भाषा में डाले। वास्तव में ये कवि कह रहा है, लिखा नहीं है, लेकिन ऐसे उसका मीनिंग वही है।
ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अनुवाद करते समय हमें जिस जगह के लिए हम अनुवाद कर रहे हैं वहाँ की संस्कृति, वहाँ के धर्म, कला, साहित्य, हर चीज को देख के चलना पड़ता है। जैसे आपने मुहावरे कहे, मुहावरे हर देश के अपने कल्चर के हिसाब से होते हैं, तो मुहावरे का भी आप शब्दानुवाद नहीं कर सकते हैं कि जो जो शब्द लिखा वहीं आप, वो तो फिर अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो इसलिए बिल्कुल ठीक आपने कहा कि काव्य का अनुवाद करना बहुत कठिन है, वो भी विदेशी भाषा में करना कठिन है, और वो भी मतलब रामचरितमानस जैसे तुलसीदास जी के ग्रंथ का, तो सारी ये चीजें बहुत कठिन है, और आपने इतना सहज उसको किया, तो इसके लिए तो आपको बहुत बहुत साधुवाद स्वामी जी। और आपको आपको खुद अब संतुष्टि मिली, आपने जैसा कहा कि तीन बार आपको करना पड़ा, अब आपको थोड़ा संतुष्टि मिली कि हाँ अब मेरा ट्रांसलेशन जो है वो सही हुआ है?
नहीं, एक्चुअली क्या हुआ था कि मैंने चौथी बार शुरू किया तो मेरे भाई ने और मेरे दोस्तों ने कहा अरे यार बहुत हो गया, उसको सत्वा दो, क्योंकि अनुवाद कभी समाप्त नहीं होता,
नहीं होता बिल्कुल,
जैसे अब कभी संतोष नहीं होता,
नहीं होता संतोष।
लेकिन जो त्रुटियां थी, जो मुझे जैसे अब एक हिंदी इंग्लिश जोको में आ रहा है, जैसे हिंदी में बोल रहे मुंबई में गोलियां चल रही है
जी,
तो इंग्लिश का अनुवाद है द टैबलेट्स आर वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई, जो एकदम डायरेक्ट अनुवाद है लेकिन एकदम गलत है,
गलत है शब्द अनुवाद, गलत है जी,
क्योंकि भाव तो है ही नहीं, टैबलेट्स आर नॉट वॉकिंग द बुलेट्स आर फ्लाइंग ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई। तो ये त्रुटियां अनुवाद में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन बाकी तो आप देखो 10,000 से ऊपर दोहे और चौपाइयां है
जी जी,
उसमें तो जरूर तो त्रुटियां आएगी, चाहे मेरी समझ के कारण से या कोई दूसरे कारण से, लेकिन जो मैं इस दृष्टि में अभी जो मेरी मेंटल स्टेट है, अभी जो मैं कर सकता था तो मैंने सबसे मेरी पूरी 100% मैंने दिया,
बहुत
और आगे आगे तो कुछ दूसरा करूंगा भी, उसके ऊपर मैं हो सकता है कोई दूसरे जैसे विनय पत्रिका वगैरह, लेकिन रामचरित मानस में वो दूसरी तरफ से मुझे करना पड़ेगा, अभी तो अनुवाद तो बहुत हो गया
जी। जी सर, पता नहीं स्वामी जी मुझे ऐसा पूछना चाहिए कि नहीं, लेकिन मेरे मन में ये प्रश्न आ रहा है इसलिए आपसे पूछ रही हूँ कि हम सभी के साथ ऐसा होता है, जहाँ हमारा जन्म होता है, हमारा धर्म, हमारे संस्कार, हमारी जड़ें, वो स्थान, इन सबसे हमारा एक विशेष प्रेम होता है जिसको हम नहीं जल्दी छोड़ पाते हैं, चाहे कितना भी हमें दूसरा धर्म, दूसरा दूसरी संस्कृति, दूसरे संस्कार आकर्षित करें, लेकिन फिर भी हम अपने धर्म में ही रहना पसंद करते हैं। तो क्या आप बताना चाहेंगे कि आपने मतलब सहजता से ही छोड़ दिया, या इतना ज्यादा आपको आकर्षित किया सनातन धर्म ने इसलिए, या गुरु जी का प्रभाव आपके ऊपर इतना पड़ा, या आपके माता पिता का ये आदेश था, मतलब किस तरह से आपने किया, अगर आप इस विषय में बताना चाहें कुछ तो?
तो पहले माता पिता का भी बच्चों को दूर नहीं देखना चाहते हैं, वो बच्चों को साथ में ही
साथ में बिल्कुल बिल्कुल
चाहते, चाहे जाओ अमेरिका भी जाए फिर भी कहते हैं अरे अगर जरूरत है तो जाओ, नहीं तो हमारे पास
जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
और मैं केवल भारत आया था एक महीने के लिए,
वो तो
एक महीने के मेरे कुल मिला के 20 साल से ऊपर हो गया अभी,
बताइए।
क्योंकि मैं जब आया था मुझे काफी, मुझे क्लाइमेट तो एकदम राजस्थान में आप जानते हैं गर्मी है, सब सूखा है, सब हरियाली है ही नहीं, केवल मानसून के समय में हरियाली होती है, बाकी सब पीला पीला है
जी, जी।
तो मुझे काफी फिजिकली काफी प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन लोग जो यहाँ थे वो मुझे बहुत अच्छे लगे। और जब मैं जयपुर आया था, जब मेरा गुरुजी ने जयपुर आश्रम में भेजा और कहा कि आप यहाँ रहो, अब ये कुछ सिटीज है, कुछ गांव है, जैसे आप भी भारत में करते, पूरे विश्व में करते, सिस्टर सिटी, सिस्टर विलेज
जी,
जी। तो जैसे मेरा सिटी जागरेब है और ये जयपुर में एकदम सेम टू सेम महसूस हो रहा है, जैसे मैं पुरानी सिटी में जाता हूँ, जैसे बस स्टैंड के पास जाता हूँ और बाहर से निकालता हूँ अंदर वाली गलियों से, तो मुझे महसूस हो रहा कि मैं जागरेब पहुंच गया। तो जब ऐसे महसूस हो रहा है कि एक्चुअली मैंने देश छोड़ा ही नहीं, इसलिए मैं इतनी समय से रुक पाया। तो पहला चीज है जो बापजी ने आदेश दिया, दूसरा है जो मुझे महसूस हो रहा था कि मैं घर पे ही हूँ, और तीसरा है लोगों की प्यार जो मुझे मिल रहा था, तो इसलिए जाने का अभी कोई कारण ही नहीं रहा।
जी जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। और क्रोएशिया जहाँ तक मुझे पता अपने सुंदर कंकड़ वाले समुद्र तटों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, तो स्वामी जी आप राजस्थान के रेगिस्तान में उन समुद्र तटों को तो जरूर याद करते होंगे।
जी,
क्रोएशिया जो देश है जहाँ तक मेरी जानकारी है कि वो अपने सुंदर कंकड़ वाले जो समुद्र तट है उनके लिए बहुत प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर राजस्थान में आप यहाँ के रेगिस्तान में आप अपने समुद्र तट वाले जो कंकड़ वाले समुद्र तट है उनको तो जरूर मिस करते होंगे, याद करते होंगे उनको।
वो तो है, लेकिन मेरा तो जन्म आंध्र से मतलब सिटी से में था, इसलिए मुझे ज्यादा कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। मतलब जब जाते तब तो जरूर समुद्र में जाते हैं, वहाँ तो हरियाली सुंदरता बहुत है, लेकिन जब सुंदरता आंध्र से मिला तो बाहर की सुंदरता की कोई जरूरत ही नहीं।
बहुत ही सुंदर बात आपने कह दी, बहुत ही सुंदर बात स्वामी जी कही, ये असली ज्ञान है। जहाँ पर भी बैठ के हम ईश्वर की आराधना करें और हमारा मन रम जाए, वहीं हमारे लिए सबसे सुंदर स्थान है। बहुत अच्छा आपने कहा। और स्वामी और, जी जी हाँ जी बोले।
हाँ, और एक चीज बताना था कि जैसे क्योंकि मैं मुझे जो भारत में आकर्षित किया ये था ज्ञान, ज्ञान का भंडारण, तो मुझे ये ज्ञान का जाना जो या मिला, और जैसे जयपुर को अपर आकाशी कहते हैं, तो मैंने जब विद्वानों से मिला या लोगों को तो काफी पता चला कि भारत में क्या क्या कौन सी पुस्तकें कौन से ग्रंथ प्रसिद्ध है, तो उसके ऊपर मैंने अध्ययन किया। और जैसे आप भारत के बाहर जाएंगे, आपने सुनने में आया भगवद गीता और सुनने में आया एक दो ग्रंथ, और उसके अलावा आपको ज्यादा सुनने में नहीं आया महाभारत रामायण और भगवद गीता, ये तीनों ही आपको सुनने में आते, बाकी यहाँ आकर के पता चला हजारों लाखों किताबों हैं।
जी जी,
तो इसलिए मुझे ये अच्छा लगा कि यहाँ की जो ज्ञान का खजाना है
जी,
वो एकदम बीच में ही बैठा हो तो जाने की क्या जरूरत है। कहा,
वाह बिल्कुल ठीक कहा सर, जिन खोजा तिन पाया, आपने खोजा तो आपको खजाना मिला, बिल्कुल ठीक कहा स्वामी जी। और एक बात स्वामी जी मैं और जानना चाहूंगी कि जैसा आपने बताया कि यूरोपीय देशों मतलब आप यूरोप से ही हैं, तो वहां पर सनातन का इतना ज्यादा आस्था है, लोगों को वहां पर काफी प्रचार है, तो यूरोपीय देशों में आप सनातन धर्म की क्या स्थिति देखते हैं, वहाँ लोग इस पर कितनी आस्था रखते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं।
तो पहले क्रिश्चियनिटी से पहले यूरोप देश में सनातन धर्म थे, हाँ,
अच्छा।
और ये काफी लोगों ने इसका प्रमाण भी किया, जैसे और तुर्की में भी बहुत पुराना सबसे पुराना शिवलिंग मिला, मतलब ये सनातन धर्म उस पूरे विश्व में था, मतलब यूरोप में तो जरूरी था लेकिन ऑस्ट्रेलिया में भी मिलते हैं, अमेरिका में भी मिलते हैं, लेकिन जब क्रिश्चियनिटी आ गई, क्रिश्चियनिटी ने अनफॉर्चुनेटली बाकी को दबा दिया,
दबा दिया।
क्योंकि कारण क्या था, वो नॉर्मली जो हमारा सबसे अच्छा है बाकी का कोई है
ये
आज टाइम, तो ये इसलिए अभी सनातन धर्म यूरोप में बहुत काम है और लोगों को मालूम अगर भी होता है तो भी यूरोप में जैसे कैथोलिक रोमो कैथोलिक चलते है, फिर प्रोटेस्टेंट है और ऑर्थोडॉक्स, तीन कैथोलिक कैथोलिक तीन क्रिश्चियनिटी वहाँ होती है
जी जी,
तो उसके जो सनातन धर्म इसके अंदर है, क्योंकि जब आप धर्म चेंज करते हैं तो जैसे मुस्लिमों ने जब आ गया भारत, उन्होंने मंदिरों को इतना नहीं तोड़ा, मंदिरों के ऊपर उन्होंने वो केवल टावर बना दिया और उसको मस्जिद बना दिया,
जी।
वो ऐसा होता है क्योंकि लोगों को आदत है इस जगह में जाना है, बस इस जगह को खाली कर दिया, मूर्ति को हटा दिया, मस्जिद हो गया, तो वो पूरे विश्व में ऐसे ही चल रहे, जब कोई रिलीजन आ जाता है तो उसको पुराने स्थल को खत्म करके उनको खुद को स्थापित करते ऐसे चलता रहता है। तो इसलिए वहाँ की जो चर्चित है
जी,
और वहाँ तो हर हर गांव में चर्च बना हुआ है
जी,
क्योंकि वो रोमन कैथोलिक ये सेंट्रलाइज रिलीजन है
जी,
इसलिए उनके पास पैसा की कमी नहीं है और पावर की कमी नहीं है, इसलिए तो कर सकते हैं
जी जी।
सनातन धर्म में या जैसे भारत में ये तो काफी अलग अलग विचारधारा है, या तो एक ही भगवान नहीं है, तब तब तो 33 करोड़ देवी देवता बताते हैं, ऐसे कोई तो गिना नहीं है, क्योंकि 33 देवी देवता वेदों से आया
जी।
जो पहले तो देव जो देवता जो है वो एक्चुअली एलिमेंट है, एलिमेंटल कुछ जैसे एलिमेंट्स हम कहते हैं आज केमिस्ट्री में, तो इस हिसाब से देव देवता थे, लेकिन बाद में लोगों ने अलग जोड़ दिया, तो धीरे धीरे जैसे जोड़ दिया, लेकिन अगर आप एक आपके पास भगवान है
जी,
फिर दो भगवान है, तीन भगवान है जो आप गिन सकते हैं, तो आप दूसरों से लड़ाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास कह रहे हमारे पास 33 करोड़ देवी देवता है
जी,
मतलब अनगिनत, तो जो आपका कोई भी भगवान है स्वीकृत है, क्योंकि 33 करोड़ प्लस 1
जी,
एक और जोड़ दो 33 करोड़ प्लस 2, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है
जी।
इसलिए मैं मानता हूँ जो ये 33 करोड़ देवी देवता है एक केवल जिसे मुहावरा होता है, वैसे ही है कि आप अनगिनत मानो,
प्रतीकात्मक सिंबॉलिक
है, यहाँ किसी की माना नहीं है, आप वेलकम
जी जी।
और ये टॉलरेंस इसलिए यहाँ टॉलरेंस बहुत है, तो जैसे भारत में मंत्र होता है सर्वे भवन्तु सुखिनः
जी,
अरे कौन सी देश में ये होता है जो आप कहते हैं लेट ऑल बी हैप्पी
जी जी,
नहीं लेट ऑल बी फ्री, ये तो होता ही नहीं है
नो।
हम कम से कम तो पड़ोसी को देखना ही नहीं चाहते
नहीं जी,
और शत्रु देश तो है ही है, लेकिन भारत में वो ही है सर्वे सुखी न भवंतु, तो वैसे वो विचारधारा जो है वो भारत के ऋषि मुनियों ने किया था और काफी 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 अच्छा था
जी, बहुत अच्छी बात तो, आपने कही स्वामी जी जी, यानी हमारा जी, धर्म भी इन्हीं बातों के ऊपर टिका हुआ है ऐसा आपका कहने से लग रहा है जी।
उसमें क्या है कि जितना टॉलरेंस सनातन धर्म में है
जी,
इतना कोई भी धर्म में
नहीं है, नहीं है जी,
और लेकिन तो फंडामेंटलिस्ट तो हर धर्म में होते हैं
जी जी,
फंडामेंटलिस्ट तो दो ही चीज होते हैं पावर एंड मनी
जी,
तो इसलिए फंडामेंटलिस्ट की बात हम करेंगे नहीं, हम जनरल बात करेंगे, तो जैसे जो भी है
जी जी। तो स्वामी जी आपने जैसा बताया कि यूरोपीय देशों में मतलब क्रिश्चियन धर्म से पहले कैथोलिक थे या जो भी उनके पहले सनातन धर्म था, मुस्लिम देशों में था ही था, तो क्या कारण है कि सनातन धर्म को हटाकर या इसको एकदम तोड़कर लोगों ने दूसरे धर्मों का, मतलब ठीक है कोई दूसरा धर्म आए वो उसका भी स्वागत है, उसको आस्था से देखना चाहिए हर धर्म को, लेकिन इसको एकदम नष्ट करके बुरी तरह से एकदम मूर्तियों को तोड़कर या धर्म की पुस्तकों को नष्ट करके आप जानते ही हैं जलाकर और सब करके किया गया, तो इसका कारण आपको क्या लगता है कि ये सनातन धर्मावलंबियों की कमी थी लोगों की या धर्म में क्या था, मतलब क्या आप किस नजर से इस बात को देखते हैं?
जब किसी को दूसरों को खत्म करना है
जी,
तो उसका जो लिटरेचर है, जो भी उनका ज्ञान है, जो उनके गुरु है, पहले उनको नष्ट किया जाता है
जी जी।
उसके एक परफेक्ट एग्जांपल है 1835 में जब ब्रिटिशर लोगों ने सोचा कि हम भारत में कैसे राज्य करेंगे, तो उन्होंने विचार किया कि और उनको समझ में आ गया कि पहले गुरुकुलों को समाप्त करना है, फिर जैसे गुरुकुल समाप्त हो गए तो उनका यहाँ का जो परंपरा चल रही संस्कृति चल रही है वो समाप्त हो जाएगा, उसके बाद अब केवल काले रंग के वाले को ब्रिटिशर्स को पैदा करेंगे
जी।
तो उन्होंने 1835 से 1835 में स्कूलों को बंद कर दिया। 6000 गुरुकुल थे उस वक्त कलकत्ता एरिया में केवल
जी।
और जो भी स्टूडेंट्स या टीचर्स ने प्रोटेस्ट किया उसको सबको मार डाला या भगा दिया, जो भी है
जी।
वो इतिहास में तो लिखा है। और 40 साल ये पूरी संस्कृति को, मतलब गुरुकुलों को समाप्त करने का, मतलब ये एकदम 40 साल से कोई गुरुकुल की अलाउ नहीं थी। तो 1875 में पहला यूनिवर्सिटी खोला और कह रहे हैं ब्रिटिशर्स ने एक यूनिवर्सिटी खोली की बिचारे गरीब पुअर इंडियंस को ज्ञान लाने के लिए। ओके, पहले तो गरीबी बनानी थी, फिर उसके बाद ज्ञान खत्म करना था, फिर उसके बाद अब शासन करेंगे
जी,
और दूसरों को जैसे अंग्रेज सब बुरे नहीं है
जी।
लेकिन जैसे कोई भी कहता था मैं दूसरे देश में जाऊंगा वहां से लूट करके सामान लेके आऊंगा, वो किसी को अच्छा नहीं लगेगा
ना।
और वो बता रहे थे कि हम उसको ज्ञान देने जा रहे हैं, उसको मदद करने जा रहे हैं और उसके बदले में हम सामान लाएंगे, तो सब लोग हाँ ठीक है करो
जी जी।
वो ऐसे था नहीं, लेकिन ये प्रेजेंटेशन
दिखाया उन्होंने जी जी,
मीडिया प्रेजेंटेशन
जी जी।
तो आजकल जो वो फेक न्यूज चल रही है वो तो फेक न्यूज बहुत सालों से, वो तो 100-200 साल से फेक न्यूज, और आजकल बस केवल नाम ही चेंज हो गया फेक न्यूज।
ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे
हैं, हजारों सालों से है, इसको कुछ बता दो। और वैसे पुराणों में भी लिखा है, जैसे रामचरितमानस को लेकर के देख लेना कि रावण ने क्या किया था, जिसके भी जिस गांव में भी पंडित है, पहले पंडितों को मर डाला या भगा दिया
जी।
लेकिन पता चला कि ये भी अच्छा नहीं है, तो उन्होंने खुद के राक्षसों को पंडित ड्रेस करके लोगों को विरुद्ध धर्म सिखाया। वो वैसे चल रहे, मतलब ऐसे पूरे समय पे समय चलता है। लेकिन सनातन धर्म चलता है वो ऋषि मुनियों की तरह से, जो आजकल भी बहुत लोग है जो ज्ञान वाला है
जी।
जैसे दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मुस्लिम लोग आए थे और पता चला कि हिंदू बहुत कन्वर्जन नहीं लेते सरलता से, उनको कैसे कन्वर्ट करे, तो उन्होंने सूफी को स्थापित किया कि हमारे मुस्लिम के अंदर भी ऐसे भक्ति भाव है।
जी जी बिल्कुल ठीक जी जी।
तो कारण था कि कन्वर्जन हिंदू टू मुस्लिम कन्वर्जन था
जी।
लेकिन क्या हुआ, भारत इतना बड़ा है कि लोगों को जो सूफी बन है उसको वास्तव में ज्ञान हो गया और उनको वो अलग हो गए, तो सूफी मूवमेंट जो है वास्तव में अच्छा मूवमेंट है क्योंकि उनको भी ज्ञान हो गया और वो प्रचार कर रहे
जी।
तो ये भारत की ये खासियत है कि जो भी यहाँ आते एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं,
इतना ज्यादा यहाँ पर आध्यात्मिकता है कि लोग जो है खुद उसी में डूब जाते हैं। और जैसा आपने सूफिज्म के लिए कहा स्वामी जी, तो कुछ सूफी संत तो बहुत निश्चित रूप से वो श्रद्धा के योग्य हैं, उन्होंने सूफिज्म की ही बात करी है। लेकिन बाद में जहां तक मुझे लगता है, शायद पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं, कि बाद में एक जिहाद की तरह भी सूफिज्म का प्रयोग किया गया और लोगों को तंग करने के लिए या उनको प्रताड़ित करने के लिए भी। तो कोई भी धार्मिक आंदोलन जो है वो अपने मतलब के लिए जहां चलाया जाता है तो उसके परिणाम तो अच्छे नहीं होते हैं।
अब वो ही होता है, लेकिन क्योंकि ये तो सब पहले पॉलिटिकली कारण से थे कि हमारे पास पावर रहेगा और अगर पावर रहेगा तो हमारे पास पैसा भी रहेगा, बस यही मेन कारण है जो लोगों को आजकल भी तंग कर रहा है। पहले भी तंग किए थे, अभी भी तंग कर रहे हैं कि अभी इलेक्शन का समय है, आप देखते हैं कि पार्टियां क्या क्या नहीं बना रहे इलेक्शन की कारण से, क्या क्या मतलब उसके बताने की जरूरत नहीं, बस न्यूज़पेपर देखो और पता चलेगा कितनी
ठीक कह रहे हैं,
सही नहीं है, कितनी बातें सही नहीं है, कितनी बातें सही है, आपको खुद को मालूम।
सबका अपना स्वार्थ होता है और उसको सिद्ध करने के लिए धर्म का प्रयोग करने से भी नहीं बचते। और ये हमारे सनातन धर्म की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि इतना, जैसा आपने बताया, पुस्तकें, ज्ञान सब नष्ट करने के इतने प्रयास किए गए, कितनी पुस्तकें नष्ट की भी गईं, लेकिन फिर भी देखिए आज भी हमारे पास कितना अकूत खजाना है, अभी भी कोई कमी नहीं आई है और ना कमी आएगी। लेकिन हमको कम से कम, जैसा आप बता रहे हैं, हमें उस तरह की बातों पर चलना पड़ेगा। हमारे भारत देश में आप सनातन की क्या स्थिति देखते हैं स्वामी जी, आपको क्या महसूस होता है इस समय को देखते हुए?
अब ये मैं ऐसा करता हूँ कि सब सही होगा और क्योंकि ये काफी, जो ये प्रश्न काफी पॉलिटिकल है और ये मेरा मानना कि ये सनातन धर्म इतना पॉलिटिकल नहीं है जितना पॉलिटिकल लोग लेना चाहते हैं।
जी,
फिर भी अगर आप देखते कि
स्वामी जी, मैं पॉलिटिकल नजर से आप इसका जवाब दे नहीं चाहती हूँ, आप धर्म की नजर से ही इसका, धर्म के परिप्रेक्ष्य में इसका जवाब दें कि जैसा आजकल के कितने लोग, मतलब आपके वाली बात बिल्कुल ठीक है कि खाली जय श्री राम बोल देने से, राधे राधे बोल देने से हम सनातन धर्मावलंबी हो गए, ऐसा नहीं होगा। कहाँ तक हम सनातन परंपराओं का पालन कर पा रहे हैं, कितनी उसमें, जैसे आप गुरु लोग हैं तो गुरुओं की क्या इसमें भूमिका होनी चाहिए, एक विद्यार्थी की, माता पिता की क्या, उस नजर से थोड़ा सा बताएं, क्योंकि आप एक आश्रम का संचालन भी करते हैं, शोध संस्थान है आपका, उस नजर से मुझे इस प्रश्न का जवाब दें।
ये बहुत आपका गूढ़ प्रश्न है
जी।
और उसमें सिंपल जवाब नहीं है
जी। जी,
पहला चीज जो है, पहली बात है कि आपको रक्षा के लिए आपको तो देश चाहिए
जी,
तो आपको तो एक देश चाहिए, टुकड़े टुकड़े नहीं चाहिए, तो सबसे पहले भारत एक ही रहेगा
जी।
तो उसमें पहले लोगों ने कोशिश किया कि उन्होंने पाकिस्तान बना दिया, पाकिस्तान भारत, ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान, लेकिन आजकल आज मालूम होता है कि इससे कोई फायदा नहीं हुआ, केवल नुकसान ही नुकसान हुआ
जी। जी,
और अभी भी लोग हैं जो उसको टुकड़े करना चाहते हैं भारत को, ये नहीं होना चाहिए
जी।
क्योंकि क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब बड़े वाले लोग जैसे शंकराचार्य है, जो पुराणों में शिव जी है, विष्णु है, सब लोग, तो एक भारत में 13 ज्योतिर्लिंग, शिव ज्योतिर्लिंग 13 है
जी। जी,
एक तो नेपाल में और 12 भारत में
जी। जी,
चार धाम है
जी,
और ऐसे ऐसे भवन और शक्तिपीठ है
जी।
ऐसे लोगों ने क्यों स्थापित किया, शंकराचार्य ने 4 मठ स्थापित किया
जी।
और ये सब मंदिर जो है, मठ जो है, ज्योतिर्लिंग जो है, ये पूरे भारत के अंदर है
जी।
मतलब साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से ईस्ट, ईस्ट से वेस्ट, मतलब पूरा भारत कवर कर लिया
जी।
क्योंकि ये आपको एक यूनिटी चाहिए,
वाह,
आपको सबसे पहले एक जगह चाहिए
जी।
केवल एक जिला कुछ नहीं कर सकता है, एक सरपंच एक पंचायत में क्या कर पाएगा, इससे ज्यादा जिला कर पाएगा, जिला से ऊपर राज्य कर पाएगा, राज्य से ऊपर पूरा देश कर पाएगा, इसलिए पहले देश को सुरक्षित करना है
जी। जी,
तो और दूसरा है कि जैसे यहाँ कहते धर्म निरपेक्षता
जी,
और हिंदुओं के प्रति काफी विरोध हो रहा है और बीजेपी ने उसको धारे में लिया कि हिंदुओं को बढ़ा रहे हैं, तो उसमें क्या है कि धर्म निरपेक्षता भारत में कभी थी नहीं
जी।
क्योंकि जो सेकुलरिज्म होता है, तो मतलब किधर कोई भी रूलिंग में आपको धर्म की जरूरत नहीं है, कोई रिलीजन की जरूरत नहीं है, इसलिए धर्म इस रूप में रिलीजन ले लूंगा, क्योंकि हिंदू रिलीजन इज द ओनली अनरिकॉग्नाइज्ड रिलीजन इन इंडिया
जी।
क्योंकि मुस्लिम तो मान्यता में आ गए, क्रिश्चियन मान्यता में आ गए, बुद्धिज्म मान्यता में आ गए, जैनिज्म मान्यता में आ गए
जी। जी,
तो जैसे माइनॉरिटी में आ गए उसके रूल्स अलग हो गए, तो उनके स्कूलों में रिलीजन अलाउ हो गया
जी।
तो केवल भारत में हिंदुओं का रिलीजन का हिंदुओं का टीचिंग अलाउ नहीं है। अगर हिंदुओं का टीचिंग करते तब तो आपको गवर्नमेंट की मदद भी मिलती है
जी।
तो ये जो ये रुतिया जो होते हैं रूल्स में, क्योंकि रूल्स तो बनाया सही, मतलब विचार तो सही था
जी,
लेकिन लोगों ने उसको करप्ट करके कैसे तैसे इसको बाईपास किया
जी जी।
तो ये अभी जो यूनिफाइड रूल्स होता है, यूनिफाइड कोड ऑफ जस्टिस
जी,
अब इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा देखा जाएगा, लेकिन वैसे तो पहले से होना चाहिए था।
बिल्कुल, ये बहुत ठीक है
आपको जी। क्योंकि पहले आप जैसे या पहले उसमें क्या है कि लोग क्या चूज करते हैं, जैसे फिक्सेशन में मैंने काफी पढ़ा, फिक्सेशन में अगर आपको ये लेना है तो वो रूल्स ले लेना, अगर मान्यता में जाओगे तो ये आपको फायदा मिलेगा, तो ये नहीं होना चाहिए,
नहीं होना चाहिए जी जी।
और सनातन धर्म में सबसे पहले तो लोगों को एकता होना चाहिए, क्योंकि जो भी वैरागी सन्यासी या कोई भी दूसरा जो भी कबीर पंथी दादू पंथी कोई भी संप्रदाय है कोई भी पंथ है कुछ भी है, वो केवल एक कारण से ये ड्रेस पहन रखे है कि भगवान को प्राप्ति करने के लिए
जी।
अगर आपने भगवान को प्राप्ति करने के लिए ये पहना तब आपको नेचुरली तो गाना तो मिलना चाहिए, भेद तो मिलना चाहिए, सब कुछ अलग बात है, लेकिन एकता के साथ मतलब सब एक उखर के तो हम आगे चल सकते हैं और भारत आगे चल सकते हैं। और ये जो है ये काफी पूरे विश्व को ये बात दिखा सकते हैं, ये दिखा सकते हैं कि ये हम एक होकर के हम भविष्य की एकदम सुंदर की तरफ ले जा रहे, एक हैप्पी फ्यूचर से प्रोस्पेरिस फ्यूचर, लेकिन पैसे की पैसे के रूप में नहीं है कि हमारे पास सबसे ज्यादा जीडीपी होगा, हमारे पास खुशी होगी, हमारे पास संतुष्टि होगी।
वाह जी, बहुत सुंदर बात आपने कही स्वामी जी। और मुझे लगता है स्वामी जी कि शायद विश्व में हमारा ही एक ऐसा देश है जहां अल्पसंख्यकों को ज्यादा अधिकार है, बहुसंख्यकों को शायद कोई अधिकार ही नहीं है। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण अगर अभी आप देखें तो कश्मीर है, वहां से क्या हुआ, पलायन हुआ हिंदुओं का, या उनको कैसे निकाला गया, कैसे उनके ऊपर अत्याचार किए गए, उनको जो भी किया गया, क्या इस पटल पर हम उस बात की बहुत चर्चा करें, लेकिन ये शायद हमारा ही एक देश है, फिर भी हम सब सहते हैं चुपचाप। तो ये हमारी सनातन संस्कृति, हमारा सनातन धर्म है जो हमको इतना सहने की शक्ति देता है। मैं तो यही कहूंगी कि हम ज्यादा शक्तिशाली की जो हम इतना सहते हैं, टॉलरेंस वाली बात आपने जो कही जी,
उसमें एक सीमा भी होता है, टॉलरेंस भी है लेकिन उसमें एक सीमा भी होती है
जी।
लेकिन कुल मिला के अगर आप आंख से आंख का रूल ले लेंगे तब पूरे विश्व अंधे हो जाएगा, कोई भी आदमी बिना अंधे का मतलब अंधे के साथ नहीं रहेगा। तो ये इसलिए सनातन धर्म हमको सिखाते है ठीक है माफ तो करो लेकिन भूलो मत, थोड़ा ध्यान रखो, क्योंकि तो इतिहास में बहुत सारी ऐसी अजीब सी युद्ध चल रही थी जिसमें आदमी ने माफ कर दिया उसके शत्रु को, फिर उसके 10-12 बार हारने के बाद शत्रु ने उसको मार डाला
जी जी। बहुत उदाहरण है जी, बिल्कुल।
तो ऐसे ऐसे थोड़ा सा इसमें मतलब कुछ तो होना चाहिए इस पृथ्वी के रूप से और कुछ होना चाहिए एक आध्यात्मिक के रूप से, जो ईश उपनिषद में बता रहे कि जो केवल ज्ञान के तरफ जा रहे जिसमें अज्ञान इस रूप में है जैसे पावर पोजीशन फूड हाउस एंड सो ऑन, ज्ञान विज्ञान अज्ञान इसको ईश उपनिषद में अज्ञान कहते हैं, तो ये अब अंधेरे में जाएगा। और अगर आप जाएंगे ज्ञान के रूप में तो तो मतलब आध्यात्मिक के रूप में तो घोर अंधकार में जाएंगे, मतलब और खतरनाक अंधकार में जाएंगे। तो कहने का मतलब था कि आप दोनों को साथ साथ चलो, क्योंकि हमको शरीर तो मिला तो काम तो करना पड़ता है
जी जी।
और लेकिन ऐसे नहीं है कि केवल इस दुनिया के ही काम करें, हमारे पास 10 करोड़ आ गया ठीक है, आपने 3 रोटी सुबह 3 रोटी शाम को खा रहे, आप 100 करोड़ हो गए, आप कितनी रोटी खाओगे
जी।
तो मतलब 100 सुबह 100 शाम को आप 1000 करोड़ हो गया, तो क्या है का 4 सुबह खाओगे शाम को खाओगे, लिमिट होता है ना। तो इसलिए हमको एक लिमिट बनाना है। और जो गांधी जी ने भी बताया कि सबके लिए बहुत सब कुछ है इस पत्ते में, केवल ग्रीड के लिए सफिशिएंट नहीं है।
जी जी, बहुत ज्ञान की बात आपने कही स्वामी जी। स्वामी जी आप फिजिक्स के विद्यार्थी रहे हैं, दर्शन शास्त्र के अध्येता हैं, कंप्यूटर एक्सपर्ट भी हैं, अपना प्रकाशन भी है आपका, साहित्य पर भी काफी कुछ लिखा, सनातन परंपरा पर भी आपका ज्ञान और आपकी सोच हमें विस्मय में डालती है, और विश्व गुरु दीप आश्रम शोध संस्थान के आप संचालक भी हैं, तो इतना सब कुछ कैसे कर पाते हैं स्वामी जी आप?
कुल मिला के ये तो मेरा अकेला काम नहीं है। सबसे पहले जो आप जब शिष्य बनते हैं तो पहले गुरु कृपा है। गुरु को हम क्यों मानते हैं, क्योंकि अगर गुरु नहीं होता, अगर हमारे स्वामी महेश्वरानंद जी विश्व गुरु जी नहीं होते, तो मुझे भारत के बारे में इतना नहीं पता चलता है। क्योंकि यूरोप में भारत एक, जब मैं आया था तो भारत एक गरीब देश था जिसमें लोग नंगे घूम रहे थे, उसके खाने को कुछ नहीं मिल रहे थे। तो मेरे दादी जी ने बहुत ऑब्जेक्शन लगाया कि आप क्यों जा रहे हो, वह कुछ नहीं होगा, आप अमेरिका जाओ कमाओ, लेकिन भारत में क्यों जा रहे हो।
जी जी।
और बाद में यह आकर के पता चला कि भारत में तो काफी चीज है ठीक है, गरीबी भी है लेकिन अमीर लोग भी बहुत हैं। और दूसरा है कि ये शोध संस्थान जो है तो मैं नहीं चलाता हूँ, मैं केवल यहाँ ऑप्शन दे रहा हूँ लोगों को कि अगर आप कुछ प्रकाशित करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते, क्योंकि यहाँ के जो गुरुजन जो है जिसमें लोगों ने व्याकरण किया, शास्त्री किया, आचार्य किया, पीएचडी किया, सब कुछ किया, लेकिन मौका नहीं मिल रहा है
जी।
और जैसे पूरी जिंदगी लोगों की स्कूल में निकल गए, कॉलेजों में निकल गए, तो और कॉलेजों में तो काम चल रहा है, तो खुद का काम कब करेंगे, खुद का विचारधारा कब प्रस्तुत करेंगे
जी जी।
तो ये भी जैसे सेवानिवृत्त हो गए लोग और जो करना चाहते हैं, तो मैं उनको ऑप्शन दे रहा हूँ कि अब शोध संस्थान में अगर आपका मदद कर सकते तो हम मदद करेंगे। इसलिए शोध संस्थान मेरा नहीं है, ये सब आप लोगों का है।
बहुत बहुत आपके विचार बहुत उच्च हैं स्वामी जी। आप अपना इतने अच्छे कर्म कर रहे हैं और आपने, मुझे पता है कि आप इस शोध संस्थान द्वारा बहुत सारे लोगों को बहुत अवसर दे रहे हैं, और ये तो आपका बहुत उदारता है कि आप कह रहे हैं कि बाकी लोगों का ठीक है, सहयोग से ही सब चीजें चलती हैं और दूसरे लोगों का भी योगदान है, लेकिन आपने इसको किया शुरू तो ये आपका भी इसमें बहुत बड़ा हित है
जी जी। ये तो आप लोग की कृपा है। तो
और कुछ कहना चाहेंगे संदेश हमारे चुभन के श्रोताओं को स्वामी जी?
अभी एक हम पांडुलिपि के ऊपर शोध कर रहे हैं।
अच्छा।
और पता चला कि लिपि बहुत पहले अलग थी, और मैंने अभी एक प्रकाशन तैयार कर रहा हूँ जो मेरी बहुत इच्छा है कि जितनी भी लिपियां है भारत में एक पुस्तक में इसको प्रकाशित करना चाहता हूँ।
जी, जी।
साउथ के, नॉर्थ के, ईस्ट के, वेस्ट के, सबके लिपियां जो है तो इसको प्रकाशित करना चाहता हूँ, जैसे चाहे पुराने हैं या नए वाले हैं, जो भी चलते हैं या नहीं चल रहे हैं। तो जैसे देवनागरी का आपने नाम सुना,
जी, जी।
फिर कनाडा का नाम सुना, तेलुगु का नाम सुना,
जी, जी।
लेकिन तुलु का नाम सुना आपने? शारदा लिपि का शायद आपने?
जी, शारदा लिपि का सुना।
नंद नागरी ग्रंथ लिपि, ऐसे ऐसे अलग अलग लिपियों है जो पूरा भारत में मिलता था। इस लिपियों के ऊपर हम थोड़ा सा काम करते हैं, मतलब लंबा चौड़ा काम है, ऐसे सरल नहीं है
जी जी।
लेकिन अभी पूरा आपने देखा भी G20 में भी पांडुलिपि का प्रकाशन किया मोदी जी ने दिल्ली में, तो ये इसके ऊपर भी हम काम करना चाहते कर रहे हैं, करना नहीं चाहते कर रहे हैं।
ये तो बहुत बड़ा काम होगा स्वामी जी,
बहुत बड़ा काम है और एक आदमी के लिए नहीं है, एक बहुत काम है,
बहुत लोगों के लिए, क्योंकि हर प्रदेश की हर तरफ की भाषा रहेगी, लिपि रहेगी, तो उस वहाँ के लोगों से भी आपको जानकारी लेनी पड़ेगी, उनसे मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमने भी दक्षिण भारत की भाषाओं पर और वहाँ की लिपि पर थोड़े बहुत कार्यक्रम कर रहे हैं, तो देखा तमिल तेलुगु इन सब लिपियों का बहुत ही समृद्ध साहित्य है इनमें, तो ये तो बहुत बड़ा कार्य होगा आपका स्वामी जी।
आप एक काम कीजिए, आप ग्रंथ लिपि देख लीजिए, ग्रंथ लिपि से नॉर्थ में जाकर के देवनागरी बन गए और साउथ में जाकर के सब लिपियां हो गई, इसलिए आपको काफी फायदा होगा अगर आप ग्रंथ लिपि देखोगे। पहले ग्रंथ लिपि पढ़ लीजिए, 10 दिन लगेगा ज्यादा से ज्यादा, तो आपको ये बहुत मदद करेगा।
जी स्वामी जी, होना चाहिए, हमारे देश की इतनी लिपियां रही, इतना समृद्ध रहा सब कुछ, और आज हम सब भूल गए हैं, कुछ हमें पता ही नहीं है, तो ये तो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बहुत बड़ा कार्य होगा आपका स्वामी जी, आप सबका मैं कहूंगी।
जी जी,
जल्दी आपका ये कार्य पूर्ण हो, फिर हम आपकी इस पुस्तक के साथ आपके साथ कुछ चर्चा करें। स्वामी जी, मैं जानती हूँ कि आप बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए बहुत आपकी आभारी हूँ। और कुछ कहना चाहे स्वामी जी जाते जाते?
नहीं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे चूज किया कि आप इंटरव्यू ले रहे, और अगर मैंने कोई गलती
स्वामी जी
तो माफी मांग,
ऐसा ना कहें स्वामी जी, ऐसा ना कहें, आपका आशीर्वाद और आपका मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता रहे, बस मैं यही चाहती हूँ, और जब भी हमें कुछ जानकारी आपसे लेनी होगी, हमारे मन में कोई ऐसे सवाल आएंगे, तो हम आपको जरूर पुनः चुभन पर आमंत्रित करेंगे और आपका थोड़ा सा समय चाहेंगे। आपका बहुत बहुत आभार सर, प्रणाम स्वामी जी,
ऑल द बेस्ट फॉर योर पॉडकास्ट एंड एवरीथिंग।
थैंक यू, हरिओम।